हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 15 श्लोक नंबर 22 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तद्धाम वृंदावनम रम्याकाचिदुपासना व्रजवधु वर्गेनया कल्पिता, श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममालम प्रेम पुमर्थो महां श्री चैतन्य महाप्रभु मतमितं तत्राधरो नापरा वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिंबफल धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैश्चिकीं। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की इच्छा तीसरा स्कंद अध्याय 15 जिसका शीर्षक है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। अत्यंत ही सुंदर रीति से ब्रह्मा जी देवताओं को भगवान के साम्राज्य के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि देवता परेशान हैं कि इतना आतंक इतना अंधकार क्यों हो गया है। तो अब भगवान के धाम के विषय में बताने के बाद भगवान के धाम में क्या घटना हुई जिसके कारण इस संसार में इतना अंधकार हो गया है कि देवताओं को अपना कार्य करने में भी मुश्किल हो रहा है, तो उसको बाद में बताएंगे। पहले तो इतना सुंदर और इतना मनमोहक वर्णन कर रहे हैं वो ईश्वर के साम्राज्य का, उसका आनंद लेंगे। श्लोक नंबर 22, ब्रह्मा जी कहते हैं, वापीषु विद्रुम तटास्वमलामृतासु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसी भीरीक्षम अभ्यर्चति स्वलकम उन्नसामि क्षवक्त्रम उच्चेषितम भगवतीत्यमतांग प्रियश्री वापीषु विद्रुम तटास्वमलामृतापसु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसी मिरीशम अभ्यर्चति स्वलकमन्नु स्वलकम उन्न समीक्ष वत्र वक्त्रम उच्छेषितम भगवतीत्यमतांग यश्री। अर्थात वापीशु अर्थात तालाबों में, भगवान के धाम में जो तालाब हैं, विद्रुम तटसा, विद्रुम यानी मूंगे के बने, तटसा तटासु अर्थात किनारे, और अमल यानी पारदर्शी, अमृत अमृत अर्थात अमृत जैसे, अपसु यानी जल, बहुत ही सुंदर जल के तालाब हैं और बिल्कुल साफ सुथरे, ऐसा लग, मतलब ऊपर से जो नीचे चीज पड़ी होगी ना अमल, मतलब वो साफ साफ दिख रही है। और प्रेष्यान्विता निजवन, प्रेष्यान्विता दासियों से गिरी, निजवने अपने बागीचों में, तुलसी भी तुलसी से, ईशम परमेश्वर को, अभ्यर्चति स्वलकम अभ्यर्चति यानी पूजा करती है, स्वलकम यानी तिलक से आभूषित मुख वाली, उन्नमस अर्थ उन्नसम अर्थात उठी नाक, नासम बोलते नाक को और उन्न मतलब ऊपर उठे, यानी कि बहुत ही सुंदर नाक है, ईक्ष्य वक्त्र देखकर, वक्त्र यानी मुख, इच्छेषितम यानी चुंबित होकर भगवता भगवान द्वारा, इति इति यानी इस प्रकार, अमत यानी सोचा, अंग हे देवताओं यत् श्री जिसकी सुंदरता। अनुवाद, ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं कि लक्ष्मियां अपने उद्यानों में दिव्य जलाशयों के मूंगे से जड़ी किनारों पर तुलसी दल अर्पित करके भगवान की पूजा करती हैं। कल हमने बहुत सारे लक्ष्मियों के विषय में पढ़ा था ना, जो बहुत ही सुंदर हैं, वो क्या करती हैं, भगवान की पूजा करती हैं। और पूजा की, भगवान की पूजा करते समय वे उभरे हुए नाकों से युक्त अपने अपने सुंदर मुखों के प्रतिबिंब को जल में देख सकती हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भगवान द्वारा मुख चुंबित होने से वे और भी अधिक सुंदर बन गई हैं। अब यहाँ पर दिख रहा है जलाशय बहुत सुंदर है ना, तो भगवान को तुलसी दल रख रही हैं और जैसे ही चरणों की ओर झुकती हैं तो भगवान का जो मुख है उनके जो गाल है वहां तक पहुंचता है, और फिर ऐसा लगता है जैसे भगवान जो है वो उनको चुंबन कर रहे हैं और वो बहुत ही सुंदर दिखती हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, सामान्यतः जब किसी स्त्री का पति उसका चुंबन करता है तो उसका मुख अधिक सुंदर हो जाता है। वैकुंठ लोक में भी यद्यपि लक्ष्मी जी उतनी ही सुंदर हैं जितनी की कल्पना की जा सकती है, तो भी वे भगवान द्वारा चुंबित होने के लिए प्रतीक्षा करती हैं, जिससे उनका मुख और भी अधिक सुंदर लगे। जब लक्ष्मी जी अपने उद्यान में तुलसी दल से भगवान की पूजा करती हैं, तो दिव्य निर्मल जल वाले तालाबों में उनका सुंदर मुख दिखता है। आगे ब्रह्मा जी एक बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि जब हम भगवान और उनके प्रियतमाओं के विषय में बात करते हैं ना, तो इससे हृदय शुद्ध होता है। लेकिन यही बातें आज संसार में की जाती हैं, किसके बारे में? जो भौतिक लोग हैं, जो काम वासनाओं से भरे हुए हैं, उनकी स्टोरीज, फिल्म स्टोरीज बताने में सबको बहुत आनंद आता है। लेकिन कोई वैकुंठ जगत में किस तरह से भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, वो किसी को बोलने में रुचि नहीं है। आज तक हमने कभी सुना नहीं होगा ना, जैसे अभी यहाँ पर बताया गया कि कितना सुंदर तरीके से लक्ष्मी महारानी जो है वो भगवान की तुलसी से पूजा करती हैं और उनका मुख भगवान के चुंबन से और भी सुंदर हो जाता है। तो माना ऐसी बात हमें कभी भी कोई लोग हम चर्चा नहीं करते। यह हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि प्रेम जो है वो एक वास्तविकता है और प्रेम केवल भगवान के साथ ही संभव है। और जब वह प्रेम की चर्चा भगवान के साथ संबंधित करके, उनके भक्तों के साथ संबंधित करके की जाती है, तो वो वास्तव में प्रेम होता है। बाकी हम किसी की भी प्रेम कहानी बताते हैं ना, लव स्टोरी, वो केवल काम वासना होती है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होती। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं आगे श्लोक नंबर 23 में, यन्न व्रजन्त्य कभितो रचनानुवादात् श्रावन्ति येन्य विषया कुकथा मतिग्नि यास्तु श्रुता हतभगैर्निभिरात्मसारा तांस्तान् क्षिपन्त्य शिररेषु तमस्सुहन्ता। यन्न व्रजन्त गभिदो, यन्न का मतलब है यत, वैकुंठ, न मना कभी नहीं, व्रजन्ति पहुंचते हैं, अगभिद सभी प्रकार के पापों के विनाशक, रचना अर्थात सृष्टि का, अनुवाद अनुवादत अर्थात कथन की उपेक्षा, श्रवंती सुनते हैं, ये जो अन्य विषया को कथा, अन्य विषया का मतलब है कि दूसरे विषय, भगवान की नहीं दूसरे, और वो क्या है? कुकथा, भगवान का विषय कथा है, और जो दूसरा है भगवान निकाल दिया जाए तो वो क्या है? बुरे शब्द है, मतिकनी बुद्धि को मारने वाले हैं, या जो तू लेकिन श्रुता हत भगैर निभिरात सारा। श्रुता का मतलब होता है सुना जाता है, हत बगैर अभागे लोग, जो अभागे होते हैं ना, बदनसीब होते हैं, उनको वैकुंठ में भगवान के प्रेम के आदान प्रदान में आनंद ही नहीं आता। भगवान की कथा सुना हो तो उनको बेजारी होती है, और किसी सिनेमा में लेके जाओ, वहां पर वो जो थर्ड क्लास लव स्टोरी होगी ना, उसको बहुत आनंद से लेते। वो यहाँ पर इनको हतभाग कहा गया, हतभाग नृभि मनुष्यों द्वारा, आत छीना हुआ, सारा यानी जीवन मूल्य, और तान क्षिपन्त्य, तान का मतलब होता है कि तान का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति, क्षिपन्त फेंके जाते हैं, अशरेण यानी अशरेषु समस्त आश्रय से विहीन, तमसु संसार के सबसे अंधेरे भाग में, हंत अर्थात हाय। ब्रह्मा जी कहते हैं ये अतीव शोचनीय है कि अभागे लोग वैकुंठ लोकों के विषय में चर्चा नहीं करते, अपितु ऐसे विषयों में लगे रहते हैं जो सुनने के लायक ही नहीं है। वो कुकथा है ना, वो सुनने के लायक नहीं है, तथा मनुष्य की बुद्धि को संभ्रमित करते हैं। जो लोग वैकुंठ के प्रसंगों का त्याग करते हैं तथा भौतिक जगत की बातें चलाते हैं, वे अज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं। तो हमें बहुत सावधानी से चर्चा का विषय देखना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्या बात सुन रहे हैं। वास्तव में जो हम श्रवण करते हैं और जो हम बोलते हैं ना, वो हमारी तपस्या, वो हमारी वास्तविकता का प्रदर्शन करता है। अगर हम भौतिक जगत के विषय में बहुत ज्यादा लालायित होते हैं बोलने के लिए, तो समझो हमारी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट है। और उससे क्या होगा, यहाँ श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, तमसु अर्थात वो अंधकार में गिरेंगे और अशरणु यानी समस्त आश्रय से विहीन हो जाएंगे। तो इसे भगवान श्री कृष्ण 10.9 में कहते हैं कि कथयंतस्तु माम नित्य, वो जो मेरे भक्त होते हैं ना, वो किस तरह से बात करेंगे, केवल मेरे विषय में बात करेंगे, दूसरे के। तो ये भक्त की पहचान है कि वो जब भी बोलता है भगवान के विषय में बोलता है, ना कि संसार के विषय में। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी तो आगे बता रहे हैं कि सबसे अभागे तो निर्विशेषवादी हैं, जो आध्यात्मिक जगत के चित्र वैचित्र्य को नहीं समझ पाते। वे वैकुंठ लोक के सौंदर्य की बात चलाते भयभीत होते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि ऐसा वैचित्र्य अवश्य भौतिक होगा। ऐसे निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत पूर्णतया शून्य है, तथा दूसरे शब्दों में वहां कोई चित्र वैचित्र्य नहीं है। इस मनोवृत्ति को यहाँ पर कुकथा मत्तिघ्नि अर्थात अयोग्य शब्दों द्वारा मोहग्रस्त बुद्धि कहा गया। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जो निर्विशेषवादी होते हैं, वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करते कि भगवान का कोई स्वरूप है। अब जब भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, तो भगवान के साथ कोई लीला भी नहीं होगी। भगवान अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में कोई प्रेम का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तो उनको ये चीज समझ में ही नहीं आती है। मुझे लगता है कि जो निर्विशेषवादी होंगे ना, वो भागवतम को स्वीकार नहीं करते, वो भगवत गीता को स्वीकार करते हैं कि गीता में तो हर श्लोक को वो लोग अपने हिसाब से बता सकते हैं, लेकिन भागवतम को क्या करेंगे। वो साफ साफ लिखा है कि लक्ष्मी है वो इतनी सुंदर लगती हैं, जैसा कि मतलब पति के स्पर्श से या चुम्बन से वो कितनी सुंदर हो जाती है, उसी तरह से यहाँ पर प्रेमिकाओं के साथ अपने भगवान की जो प्रेम लीलाओं के विषय में बताया जाता है, या भगवान जब छोटे होते हैं तो यशोदा मैया के साथ ग्वाल बालों के साथ जो लीला करते हैं, तो वो तो निर्विशेषवादी है ना। वो इन सब बातों को नकारते हैं, और इससे क्या होता है, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कुकथा मतिग्नि अर्थात अयोग्य शब्दों द्वारा मोहग्रस्त बुद्धि। कहा जाता है यहाँ पर शून्यवाद तथा आध्यात्मिक जगत की निर्विशेष स्थिति की भर्त्सना की गई है, क्योंकि उनसे मनुष्य की बुद्धि मोहग्रस्त हो जाती है। निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी किस तरह इस जगत के विषय में जो चित्र वैचित्र पूर्ण है सोच सकते हैं। चित्र वैचित्र मतलब जिन स्वरूप है ना हर जगह पर, लेकिन वो तो मानते ही नहीं है स्वरूप को, तो वो किस तरह इस जगत को के विषय को विषय में जो चित्र वैचित्र पूर्ण है सोच सकते हैं, और तब कह सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में चित्र वैचित्र नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। अतएव जब तक आध्यात्मिक जगत में चित्र वैचित्र नहीं होगा, तो इस जगत भौतिक जगत में क्षणिक चित्र वैचित्र कैसे हो सकता है। अभी ये जो भौतिक जगत है ना, वो क्या है, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब। का क्या मतलब होता है, जैसे हम आईने के सामने खड़े होते हैं ना, तो उस आईने के अंदर हमारा प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन वो प्रतिबिंब होता तो प्रतिबिंब है, लेकिन एज इट इज जैसा हम होते हैं ऐसा होता है। अगर हमने मतलब अपने फेस पे कोई कॉस्मेटिक लगाया है, लिपस्टिक लगाई है या बाल कैसे बनाए हैं, वो एज इट इज दिखेगा ना। ये अलग बात है कि मैं सत्य हूं और वो प्रतिबिंब है, लेकिन होगा तो एज इट इज ना। जैसे मैंने ड्रेस पहनी होगी वैसा ही मेरे साथ अगर कोई और खड़ा होगा तो वो दिखेगा। तो ये भौतिक जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। मतलब यूं समझो, नीचे संसार में एक आईने में दिख रहा है, असल में ऊपर है। लेकिन आईने में दिख रहा है तो एज इट इज होएगा ना, जैसा पहले ऊपर है। तो इस बात को श्रील प्रभुपाद जी यहां कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। अतएव जब तक आध्यात्मिक जगत में चित्र वैचित्र्य नहीं होगा, तब तक इस भौतिक जगत में क्षणिक चित्र वैचित्र्य कैसे हो सकता है? अगर वहां पर कोई स्वरूप है, कोई संबंध है, तभी तो यहां पर दिखेगा, क्योंकि वो तो उसका एक प्रतिबिंब है। इस बात का कोई इस भौतिक जगत को पार कर सकना, इस बात का कि कोई इस भौतिक जगत को पार कर सकता है अर्थ यह नहीं है कि यहाँ दिव्य चित्र विचित्र नहीं है। भागवत में और विशेष रूप से इस श्लोक में इस बात पर बल दिया गया है कि जो लोग आध्यात्मिक आकाश तथा वैकुंठ लोकों की वास्तविक दिव्य रूप के विषय में विचार विमर्श करने तथा समझने का प्रयास करते हैं, वे भाग्यवान हैं। वैकुंठ लोकों का चित्र वैचित्र्य भगवान की दिव्य लीलाओं के संबंध में वर्णित है, किंतु लोग आध्यात्मिक धाम तथा भगवान के दिव्य कार्यकलाप को समझने का प्रयास करने की बजाय राजनीति तथा आर्थिक विकास में अधिक रुचि रखते हैं। हाँ, श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पर कुछ लोग बैठे हों, उनको अगर हम लोग भगवान के बारे में बताए ना, तो कोई भी है ना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। बाकी ये बताएं कि भाई राजनीति में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, और क्या क्या कहाँ पर मोदी जी ने क्या किया, उस वाले पॉलिटिक्स ने क्या किया, इसने क्या किया, वो सब बताएंगे ना, तो इतना ध्यान से, और फिर अपनी अपनी बातें भी बताएंगे। और आर्थिक विकास मतलब कि धन कैसे ज्यादा से ज्यादा कमाया जाए, उसके भी विषय में बात होगी ना। तो जो भी है ना, जो भी लोग होंगे, लड़के लोग, वो बहुत ज्यादा रुचि दिखाते हैं। लेकिन भगवान के बारे में बात करो तो उनको ऐसा लगता है ये फिजूल बात है। तो वे इस जगत की, जहाँ उन्हें कुछ वर्षों तक ही रहना है, स्थिति संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए अनेक सम्मेलनों और गोष्ठियों तथा चर्चाओं का आयोजन करते हैं, किंतु वे वैकुंठ लोक की आध्यात्मिक स्थिति को समझने में रुचि नहीं दिखाते। यदि वे तनिक भी भाग्यशाली हुए तो भगवत धाम वापस जाने में रुचि दिखाते हैं, किंतु जब तक वे आध्यात्मिक जगत को समझ नहीं लेते, वे इस भौतिक जगत में लगातार सड़ते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जीव का कि उसे आध्यात्मिक जगत की वार्ता में रुचि आ जाए, अच्छी लगने लगे भगवान की कथा, भगवान की कथा श्रवण करने की इच्छा हृदय के अंदर उत्पन्न हो जाए ना, बहुत बड़ा सौभाग्य है। बाकी ज्यादातर तो यही सोचते हैं, क्या ये एक एक घंटे की कथा रोजाना बैठकर सुनते रहते हैं, इनके पास बिल्कुल वेले, इनके पास और कोई काम ही नहीं है, खुद तो सुनते ही नहीं है, दूसरे जो सुनते हैं ना उनका भी परिहास करते हैं। तो इस श्लोक में बताया गया है वो क्या है, मत भाग्य, उनका भाग जो है वो भाग्य जो है वो बिल्कुल खराब है, वो दुर्भाग्यशाली हैं, हतभागे हैं, अभागे हैं। और आगे तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, ये भौतिक जगत की भौतिक वार्ताओं करने के लिए मिला ही नहीं है, ये तो इतना दुर्लभ है कि हम जैसे, ब्रह्मा जी कहते हैं हमारे जैसे जो देवता है ना, वो भी तरसते हैं कि कब हमको मनुष्य जीवन मिले और हम भगवत भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लें। तो ये भगवत भक्ति जो है वो आध्यात्मिक जगत में उन्नति जो है वो केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। इसलिए मनुष्य जीवन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें हमको भगवान के विषय में, आध्यात्मिक जगत के विषय में ही चर्चा करनी चाहिए। बहुत ही सावधानी से इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा ऐसा योनि है जिसके अंदर हम बहुत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये व्यर्थितामपि चनो निगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सहधर्मयत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्या सम्मोहिता वितत्तया बतमाययाते। ये मन वे व्यक्ति अभ्यर्थिताम यानी वांछित, अपि यानी निश्चय ही, नो निगतिम प्रपन्न, नो मन हमारे यानी ब्रह्मा तथा अन्य देवता द्वारा निगतिम अर्थात मनुष्य योनि प्रपन्न प्राप्त किया जाना, ज्ञानम च तत्व विषयम सहधर्मम यत्र, ज्ञानम अर्थात ज्ञान तथा तत्व विषयम यानी परब्रह्म का विषय, सह धर्मम अर्थात धार्मिक सिद्धांतों सहित, यत्र जहां न मना नहीं, आराधनम यानी पूजा भगवत भगवान की, वितरन्ति अर्थात संपन्न करते हैं मन अमुष्य अर्थात परमेश्वर का, सम्मोहिता विततया बतमाययाते, सम्मोहिता अर्थात मोहित, विततया सर्वव्यापी, बतहाय मायया, मायया यानी माया के प्रभाव से, ते यानी वे अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय देवताओं, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसे जीवन को पाने की इच्छा करनी होती है। देवता भी इच्छा करते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आज ब्रह्मा जी स्वयं अपने मुख से बता रहे हैं, ये व्यर्थिताम अपि च नो निगतिम प्रपन्न, ये अभ्यर्थिताम मेरी इच्छा होती है, मतलब हम देवताओं की, न मतलब हम सारे देवता ये इच्छा करते हैं क्या, निगतिम प्रपन्ना, के बस हमको ये मनुष्य जीवन मिल जाए। अनुवाद, ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय देवताओं, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसे जीवन को पाने की इच्छा होती है, क्योंकि मनुष्य रूप में पूर्ण धार्मिक सत्य तथा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यदि इस मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति भगवान तथा उनके धाम को नहीं समझ पाता, तो यह समझ लेना होगा कि वह बाह्य प्रकृति के प्रभाव से अत्यधिक ग्रस्त है। आज अगर हम ध्यान से देखें तो 1% भी ऐसे लोग नहीं मिलते हमको मनुष्य जीवन में जो भगवान और उनके धाम को समझ पाए। तो यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि वो बाह्य प्रकृति अर्थात ये जो माया है ना भगवान की, उससे ग्रस्त हो गए हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी मनुष्य की दशा की अत्यधिक निंदा करते हैं जो भगवान तथा उनके दिव्य धाम वैकुंठ में रुचि नहीं लेता। ब्रह्मा जी तक मनुष्य जीवन की कामना करते हैं। ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं को मनुष्य की उपेक्षा अधिक उत्तम शरीर प्राप्त है, फिर भी ब्रह्मा समेत सारे देवता मनुष्य जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि यह विशेष रूप से उसी जीव के लिए होता है जो दिव्य ज्ञान तथा धार्मिक सिद्धि प्राप्त कर सके। एक जीवन में भगवत धाम वापस जाना संभव नहीं है, किंतु हम कम से कम मनुष्य जीवन में जीव को जीवन लक्ष्य को समझकर कृष्ण भावनामृत शुरू कर देना चाहिए। कहा जाता है कि मनुष्य जीवन महान वरदान है, क्योंकि अविद्या के सागर को पार करने के लिए यह सरोपयुक्त नाव है। यह मनुष्य जीवन ऐसी सुंदर नाव है जो अविद्या के अज्ञान के गहनतम विशाल सागर को पार करने के लिए एक नौका है, और इस नौका को चलाने वाला कप्तान कौन है? आध्यात्मिक गुरु को उस नाव का सबसे बड़ा समर्थ कप्तान यानी कप्तान समझना चाहिए, जो माना जाता है। और शास्त्रों से प्राप्त जानकारी अविद्या के सागर पर तैरने के लिए अनुकूल वायु है। जो मनुष्य इस जीवन में इन सभी सुविधाओं का लाभ नहीं उठाता, वह आत्महत्या करता है। अतएव जो व्यक्ति मनुष्य जीवन में आकर कृष्ण भावनामृत शुरू नहीं करता, वह माया के वशीभूत होकर अपना जीवन गंवा बैठता है। और ब्रह्मा जी ऐसे मनुष्य की स्थिति का शोक व्यक्त कर रहे हैं। श्री रघुपाल की जय हो। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ऐसे व्यक्तियों के जीवन पर बहुत शोक प्रकट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति मनुष्य जीवन में आकर कृष्ण भावनामृत शुरू नहीं करता, वह माया के वशीभूत होकर अपना जीवन ही गंवा बैठता है, सत्यानाश कर देता है। क्योंकि जब भगवान के गुणगान नहीं किए, भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान की भक्ति नहीं की, तो समझो अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया। तो ब्रह्मा जी ऐसे मनुष्य की स्थिति पर शोक व्यक्त करते हैं। लेकिन आगे ब्रह्मा जी उन मनुष्यों के सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं जो कि भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, यच्च व्रजन्त निमिषा मृषभानुवृत्त्या दूरे यमा युपरिना स्पृहणीय शीला भर्तुर्मित सुयशसा कथनानुराग वैक्लव्य बाष्पकलया पुलकीर्कृतंगा यच्च व्रजन्त्य निमिषा मृषभानुवृत्त्या दूरे यम ह्युपुरिर्न स्पर्णीय शीला भर्तुर्मिथ सुयशस कथनानुराग वैक्लव्य बाष्पकलया पुलकीर्कृतंगा यच्च व्रजन्त्य यत् मन वैकुंठचनं तथा व्रजन्ति यानी जाते हैं कौन? अनिमिषा अर्थात देवताओं का, अनिमिषम अर्थात देवताओं का ऋषभ यानी मुखिया, अनुवृत्तया अर्थात चरण चिन्हों का अनुसरण करके, दूरे यमा ह्यपुरी न, दूरे मना दूर रहते हैं, यमा मना विधि विधान, ही निश्चय ही, अपरी यानी ऊपर, न यानी हमको, स्पर्णीण शीला, स्पर्ण मतलब वांछा वांछनीय, शीला यानी सद्गुण, भर्तुर मिथ सुशयस, भर्तुर मना भगवान के, मिथ मना एक दूसरे के लिए, सुशयस ख्याति कथन यानी विचार विमर्श तथा वार्ताओं द्वारा, अनुराग आकर्षक, वैकल्य वैकलव्य अर्थात भाव, बाष्पकलया अर्थात आंखों में अश्रु, पुलकीकृता अर्थात कांपते हुए अंग यानी शरीर। ब्रह्मा जी उन शुद्ध भक्तों के विषय में बता रहे हैं जो भगवान की कथाएं श्रवण करकर आनंद विभोर हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, आनंद भाव में जिन व्यक्तियों के शारीरिक लक्षण परिवर्तित होते हैं और जो भगवान की महिमा का श्रवण करने पर गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं तथा प्रस्वेदित होते हैं, वे भगवत धाम को जाते हैं, भले ही वे ध्यान तथा अन्य अनुष्ठानों की तनिक भी परवाह ना करें। भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर है और ब्रह्मा तथा अन्य देवता तक उसकी इच्छा करते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर यह स्पष्ट कथन है कि भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर है। साफ साफ बताया गया है कि भगवान का धाम सारे ब्रह्मांडों से ऊपर है। जिस प्रकार पृथ्वी के ऊपर लाखों उच्चतर लोक हैं, उसी तरह आध्यात्मिक आकाश से संबंधित लाखों करोड़ों आध्यात्मिक लोक हैं। ब्रह्मा जी यहाँ कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत देवताओं के लोक के ऊपर है। मनुष्य भगवत धाम में तभी प्रवेश कर सकता है जब इसमें वांछनीय गुण अत्यधिक विकसित हो। भक्त में सारे सद्गुण विकसित हो उठते हैं। श्रीमद् भागवतम 5.18.12 में कहा गया है कि जो कृष्ण भावना भावित होता है वे देवताओं के सभी सद्गुण से समन्वित होता है। यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा। भौतिक जगत में देवताओं के सद्गुणों की अत्यधिक सराहना की जाती है। जिस तरह जैसा हमारा अनुभव है भद्र पुरुष के गुणों की सराहना अज्ञानी व्यक्ति या निम्न जीवन में रहने वाले की तुलना में अधिक की जाती है। उच्चतर लोकों के देवताओं के गुण इस पृथ्वी के निवासियों के गुणों की उपेक्षा कहीं श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी पुष्टि करते हैं कि केवल वे ही व्यक्ति भगवत धाम प्रविष्ट कर सकते हैं जो जिन्होंने वांछनीय गुण विकसित। यहाँ शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत धाम जाने के लिए भी आपके अंदर क्वालिटीज चाहिए। जिस तरह से इस संसार में भी यदि आप कहीं जाते हो, किसी जगह पे जाना होता है तो वहाँ के लिए कुछ तो योग्यता की आवश्यकता होती है। उसी तरह भगवान के धाम में जाने के लिए 26 गुण बताए गए हैं। चैतन्य चरितामृत में भक्त के वांछनीय गुणों की संख्या 26 बताई गई है। वे इस प्रकार हैं: एक, वह अत्यंत दयालु होता है, वह किसी से झगड़ा नहीं करता, वह कृष्ण भावनामृत को जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य स्वीकार करता है, वह सबों पर समभाव रखता है, उसके चरित्र में दोष नहीं निकाला जा सकता, वह उदार है, मृदु तथा सदैव भीतर बाहर से स्वच्छ रहता है, वह इस जगत में किसी वस्तु पर अपना दावा नहीं दिखाता कि ये मेरी है ये मेरी है, वह सारे जीवों का उपकारी होता है, वह शांत रहता है और पूर्णतया कृष्ण के शरणागत होता है, वह निष्काम होता है, वह दीन विनीत सदैव स्थिर रहता है और उसने इंद्रियों के कार्यकलापों को जीत लिया होता है, वह शरीर के निर्वाह से अधिक भोजन नहीं करता, वह भौतिक पहचान के पीछे पागल नहीं रहता, वह अन्यों को आदर देता है, मानव प्रद होता है किंतु अपने आदर का भूखा नहीं रहता, अमानी रहता है, वह अत्यंत गंभीर अत्यंत दयालु तथा सौहार्दपूर्ण होता है, वह कवित्वमय होता है, वह सारे कार्यों में दक्ष होता है और व्यर्थ चर्चा के समय मौन रहता है। इसी तरह श्रीमद् भागवतम 3.26 और 21 में संत पुरुष के गुणों का उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि भगवत धाम जाने का पात्र संत पुरुष अत्यंत सहिष्णु तथा समस्त जीवों पर अतीव दयालु होता है, वह पक्षपात नहीं करता, वह मनुष्यों तथा पशुओं दोनों ही के प्रति दयालु होता है, वह ऐसा मूर्ख नहीं होता कि मनुष्य नारायण या दरिद्र नारायण को खिलाने के लिए बकरा नारायण की हत्या करे। वह सारे जीवों के प्रति अत्यंत दयालु होता है, अतएव उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह अत्यंत शांत रहता है। ये गुण उन पुरुषों के हैं जो भगवद्धाम में प्रवेश करने के योग्य हैं। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे मुक्त होकर भगवद्धाम में प्रवेश करता है। इस बात की पुष्टि श्रीमद् भागवतम 5.5.2 में की गई है। श्रीमद् भागवतम ही 2.3.24 अत्यंत अन्यत्र कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन करने के बाद क्रंदन या शारीरिक परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करता, नाम अपराध, तो समझना चाहिए कि वह कठोर हृदय है, जिससे उसका हृदय भगवान नाम का अर्थात हरे कृष्ण का उच्चारण करने के बाद भी नहीं बदलता। ये शारीरिक परिवर्तन भाव के कारण हो सकते हैं। जब हम निरपराध भाव से भगवान नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, का कीर्तन करते हैं, यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि हमें 10 अपराधों से बचना चाहिए। पहला अपराध है उन लोगों की बुराई करना जो अपने जीवन में भगवान की महिमा का प्रसार करना चाहते हैं। लोगों को परम पुरुष की महिमा समझने में शिक्षित किया जाना चाहिए। अतः जो भक्तगण भगवान की महिमा का प्रचार करने में लगे रहते हैं, उनकी बुराई कभी भी नहीं करनी चाहिए। यह सबसे भारी अपराध है। इसके अतिरिक्त विष्णु या पवित्र नाम सबसे अधिक शुभ मंगलमय नाम है और उनकी लीलाएं भी उनके पवित्र नाम से अभिन्न हैं। ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो ये कहते हैं कि चाहे कोई हरे कृष्ण का कीर्तन करे, चाहे काली का, चाहे दुर्गा का या शिव का, वे नामों का, किसी के भी नामों का कीर्तन करें, क्योंकि ये सभी समान हैं। यदि कोई यह सोचता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नाम तथा देवताओं के नाम एवं कार्यकलाप एक समान है, या यदि कोई व्यक्ति विष्णु के पवित्र नाम को भौतिक ध्वनि समझता है, तो यह भी एक अपराध है। तीसरा अपराध है भगवान की महिमा का प्रसार करने वाले गुरु को सामान्य मनुष्य समझना। चौथा अपराध है वैदिक ग्रंथों को यथा पुराणों या अन्य दिव्य शास्त्रों को सामान्य ज्ञान की पुस्तकों के रूप में मानना। पांचवा अपराध यह है कि सोचना है कि भक्तों ने भगवान के पवित्र नाम को कृत्रिम महत्ता प्रदान कर रखी है। असलर तथ्य तो यह है कि भगवान नाम अपने से अभिन्न है। सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो भगवान नाम का कीर्तन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो इस युग के लिए संस्तुत है। छठा अपराध है भगवान के पवित्र नाम पर किसी प्रकार की व्याख्या करना। सातवां अपराध है भगवान नाम के कीर्तन के बल पर पाप कर्म करना। यह ज्ञात है कि मनुष्य एकमात्र भगवान नाम का कीर्तन करने से समस्त पापों से मुक्त किया जा सकता है, किंतु इसीलिए यदि कोई यह सोचकर कि वह सभी तरह के पाप कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र है, तो यह अपराध का लक्षण है। आठवां अपराध है हरे कृष्ण कीर्तन की समता अन्य आध्यात्मिक कार्यों यथा ध्यान, तपस्या या यज्ञ करना, उन्हें किसी भी स्तर पर समान नहीं बताया जा सकता। नवा अपराध है ऐसे व्यक्तियों के समक्ष पवित्र नाम की महिमा का गुणगान करना जिन्हें उसमें कोई रुचि या श्रद्धा नहीं है। दसवां अपराध है आध्यात्मिक अनुशूलन की प्रक्रिया को करते समय किसी वस्तु का स्वामी होने का की भ्रांत धारणा के प्रति अनुरक्त रखना या शरीर को आत्मा मानना। जब मनुष्य भगवान नाम का कीर्तन करते समय इन दसों अपराधों से मुक्त होता है तो उसमें शारीरिक भाव लक्षण उत्पन्न होते हैं जो पुलक आश्रु कहलाते हैं। पुलक का अर्थ है सुख का लक्षण तथा अश्रु का अर्थ है आंखों में आंसू। जिस व्यक्ति ने पवित्र नाम का कीर्तन निरपराध भाव से किया हो उसमें सुख तथा अश्रु के लक्षण प्रकट होते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि जिन लोगों ने भगवान की महिमा के कीर्तन द्वारा सुख तथा अश्रु के लक्षण वास्तव में विकसित कर लिए हैं वे भगवत धाम प्रवेश करने के पात्र हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि यदि हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करते समय किसी पुरुष में ये लक्षण विकसित नहीं होते हैं तो समझना चाहिए कि अब भी वह अपराध पूर्ण है। इस संदर्भ में चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर उपचार का प्रस्ताव है आदिलीला 8.31। इसमें कहा गया है कि यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करता है और केवल भगवान नाम हरे कृष्ण का कीर्तन करता है तो वह सारे अपराधों से मुक्त हो जाता है। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो बहुत सौभाग्यशाली जीव होते हैं जो भगवान का नाम लेते हैं और उस समय उनको पुलक अश्रु श्वेत और कंपन ऐसे दिव्य गुण प्रतीत होते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमें नवधा भक्ति के विषय में बताया गया और दूसरा नाम अपराध के विषय में कि किस तरह से नाम अपराध से बचकर हमको भगवान की भक्ति के आगे भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होना है क्योंकि यही जीवन का लक्ष्य है कि हम भगवान को प्राप्त कर लें। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार जो आप सब इतना प्रेम से श्रवण कर रहे हो। कृपया मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण। यदि आप इन श्लोकों को YouTube पर सुनना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतम के सारे श्लोक YouTube पे मेरे पेज प्रिय वल्लभा देवी दासी पर आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और जब दिल करे कोई भी श्लोक आप श्रवण करके श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।